Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Chidambaranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित यति पंचकम तीसरा और चौथा श्लोक।
देहाभिमानम् परित्य दूरात् आत्मानमात्मन्यवलोकयन्त देहाभिमानम् परित्य दूरा आत्मानमात्मन्यवलोकयन् अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः कोऽपि नवन्त खलु भाग्यवन्त अहर्निशं ब्रह्मणे रमन्त कोऽपि नवन्त खलु भाग्यवन्त स्वानन्द भावे परितुष्टमन्तः स्वशान्त सर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः स्वानन्द भावे परितुष्ट्यन्तः स्वशान्त सर्वेन्द्रिय वेत्तिमन्तः नान्तं न मध्यं न बहिस्मरन्त कोऽपि नवन्त खलु भाग्यवन्त नान्तं न मध्यं न बहिस्मरन्त कोऽपीनवन्त खलु भाग्यवन्त देहाभिमानम्
कल हम लोग सुन रहे थे कंथामपि स्त्रीमिव कुत्स्यन्तः साधक के लिए दोषों के रूप में सबसे अधिक अगर निंदा की गई तो स्त्री या पुरुष की, पुरुष के लिए स्त्री की। लेकिन आचार्य एक नई बात कहते हैं, सही बात कहते हैं और शास्त्र के मुख्य उद्देश्य को कहते हैं कि जैसे सबसे अधिक निंदित अगर काम की वृत्ति है, काम दोष, काम क्रोध लोभ, हालांकि थोड़ा सा हम लोगों ने गड़बड़ किया है कि काम को एक जगह सीमित कर दिया और उसी गड़बड़ी को दूर करने की बात आचार्य कहते हैं। काम सिर्फ स्त्री जनित या पुरुष जनित नहीं है कि स्त्री को देख करके मन में भाव पैदा हो कि पुरुष को देख करके मन में भाव पैदा हो, वो दोष है सिर्फ। और आप रसगुल्ले के बारे में सोच सकते हैं, क्या आप कपड़ों के बारे में सोच सकते हैं, कि और किसी के बारे में सोच सकते हैं, हमने ऐसा समझा। हमने सोचा कि अगर स्त्री को देखना बंद कर दें तो हमको परमात्मा दिख जाएगा, ऐसा होता है? हमने सोचा कि अगर धन को देखना बंद कर दें तो भगवान दिख जाएगा, कि लोभ बुरा है। लोभ बुरा है, लेकिन सिर्फ एक जगह का लोभ बुरा नहीं है। अगर आप अपने नाम का लोभ करते हो, अपनी बड़ाई का लोभ करते हो, अपने सम्मान का लोभ करते हो, लोभ तो वो भी बुरा है। अपनी इज्जत या अपनी प्रतिष्ठा का लोभ करते हो, लोभ तो वो भी बुरा है। तो काम कोई भी हो, काम का अर्थ है कामना, काम का अर्थ है विचार, संसार के पदार्थों को पाने की अभिलाषा ही काम है। इसलिए भगवान शंकराचार्य बहुत बढ़िया बात कहते हैं, कंथामपि स्त्रीमिव। आप सोचिए जरा, गुदड़ी को स्त्री के समान त्याज्य कहा। स्त्री क्यों कहा? स्त्री का मतलब एक जगह मत सोचना आप, स्त्री का अर्थ है जो सबसे ज्यादा जो आपको खतरा महसूस होता था, सबसे ज्यादा जहां आपको कठिनाई महसूस होती थी। हो सकता है कि वो किसी के लिए स्त्री ना हो, वो धन हो, कि आदमी धन के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, और ऐसा भी होता है कि वो स्त्री के लिए धन को छोड़ सकता है। तो महत्वपूर्ण यहां स्त्री और धन या कोई एक चीज नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपके लिए जो भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण था और उसको छोड़ने की बात थी, आचार्य कहते हैं कि मेरे हिसाब से जो इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है वो भी उतना ही निंदित है। मैं समझा पा रहा हूं इस बात को कि जितना करोड़ रुपए छोड़ना महत्वपूर्ण था, उतना ही 25 पैसा भी छोड़ना महत्वपूर्ण है। और हम सोचे करोड़ रुपए तो छोड़ दिया, मैं तो बड़ा त्यागी हो गया, 25 पैसे हैं, अगर उसकी अभिलाषा करता हूं तो क्या बुरा है। हमारे आश्रम में एक अद्भुत व्यक्ति संत बनने के लिए आए, अभी भी है, आश्चर्य, बड़े सेठ, बड़े पैसे वाले, धनाढ्य, सोने चांदी का व्यापार करने वाले, अच्छे धनाढ्य, मतलब अच्छे संपन्न। वैराग्य हो गया, छोड़ दिया, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति छोड़ के आश्रम आ गए, संत बन गए, संन्यास ले लिया। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि 10 रुपए नहीं छूटता उनसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहे हैं? 10 रुपए नहीं छूटता। परिवार छोड़ दिया, लेकिन उनके कमरे में उनका सामान कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसके प्रति ममता खत्म नहीं हुई। इसलिए आचार्य कहते हैं कंथामपि स्त्रीभिः कुत्सयन्तः। और आप ध्यान रखना, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी चीजें छोड़ दो, हो सकता ही नहीं, ऐसा ही होता है, हम बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ देते हैं। कि हम ये घोषणा कर सकते हैं कि हम आज के बाद में स्त्री का मुंह नहीं देखेंगे, ऐसी घोषणाएं होती हैं, आप जानते हैं। कि हम ये भी घोषणा कर सकते हैं कि आज के बाद में हम पैसा नहीं छुएंगे, रुपए का स्पर्श नहीं करेंगे, यह हो सकता है। लेकिन छोटी छोटी चीजों को हम उतना ही महत्व देते हैं। और ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी चीजें छोड़ देते हैं, जरा उनके मनों को देखना, उनके भावों को देखना, उनकी वृत्तियों को देखना, उनके आचरण को देखना, उनके मन में छोटी छोटी चीजों ने इतना घर बना के रखा है कि भगवान का चिंतन ही नहीं होता। और मेरा बहुत स्पष्ट निवेदन है, साफ निवेदन है कि महत्वपूर्ण किसी चीज का छोड़ना नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आपने परमात्मा का चिंतन कितना किया। भगवान का स्मरण कितने किया। देखो कोई अगर ये दावा करे कि मैंने अमुक अमुक चीजें छोड़ दी, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कोई अगर ये कहे कि मैंने आज 2 घंटे भगवान का स्मरण किया, वो महत्वपूर्ण है। मैं आपसे एक बात कहूं कि संसार का हर आदमी 8 घंटे के लिए सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ, कि नींद का सुख पाने के लिए हर चीज छोड़ देता है, हर चीज, हर चीज। नहीं छूटती? छूटती है। आप सबसे बड़े त्यागी हैं फिर तो, कि मात्र संसार के त्याग से ही अगर कोई त्यागी होता है तो 8 घंटे के लिए आप सबसे बड़े त्यागी हैं, और हम सब त्यागी हैं, लेकिन उसको त्याग नहीं माना गया। माना गया नींद को त्याग? माना गया? नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि संसार को छोड़ा तो, लेकिन परमात्मा का स्मरण नहीं हुआ। हमने समाधि की चर्चा करते समय प्रशंसा की है, समाधि की बड़ाई की है, क्यों? क्योंकि संसार तो छूटा ही, आत्मचिंतन हुआ। हम 5 मिनट के लिए ध्यान करने बैठते हैं, वो ध्यान की हम प्रशंसा करते हैं, क्यों? 5 मिनट के लिए, क्योंकि तुमने संसार को छोड़ के 5 मिनट परमात्मा का चिंतन किया, आत्मचिंतन किया। अद्भुत बात है कि 23 घंटे 55 मिनट आपने क्या किया महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी चर्चा नहीं है कि है, लेकिन अगर आपने 5 मिनट ध्यान किया उसकी चर्चा है, उसकी प्रशंसा है, उसकी बड़ाई है। क्यों नहीं हम सकारात्मक सोच को लेकर चलते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग हमारे मन में क्यों नहीं आती है? हम क्यों निषेधात्मक बातों को महत्व देते हैं? ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो कहने की जगह क्यों नहीं कहते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो? हम इतने निगेटिव हो गए हैं कि हर जगह निषेध ही करते हैं, इनकार ही करते हैं। मुझे लगता है कि साधन शैली बदलने की जरूरत है, चिंतन शैली बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि नहीं नहीं की जगह कहना चाहिए ये, काम नहीं काम नहीं काम नहीं की जगह कहना चाहिए राम है राम है राम है, ये कहो, महत्वपूर्ण ये है। और ध्यान देना, अगर आप राम 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 कहेंगे तो काम काम के लिए जगह ही नहीं बचेगी। और ऐसे ही आप काम नहीं काम नहीं काम नहीं काम नहीं कहते जाइए तो राम के लिए जगह नहीं बचेगी। तो जो मुख्य उद्देश्य था वो तो छूट ही गया, जो मुख्य उद्देश्य था वो तो चला ही गया। मुख्य उद्देश्य आपको ईश्वर से जोड़ना था, आत्मतत्व से जोड़ना था, चिंतन से जोड़ना था, और आप निषेध में लग गए। मैं छोटा था, गुरुजी ने बड़ी प्यारी बात कही कि आप पेड़ काटने जाते हैं तो आप एक एक डाली नहीं काटते, है ना? बड़ा पेड़, विशाल पेड़, अगर उसको गिराना है तो आप क्या करते हैं? जड़ पर प्रहार करते हैं कि एक एक डाली नहीं। ऊर्ध्वमूल मदाशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, है ना? तो ये संसार वृक्ष है, इसको काटना है तो अरे डालियों को छोड़ो, हम तो पत्तों से शुरू करते हैं कि काम छोड़ो, कि क्रोध छोड़ो, कि लोभ छोड़ो, कि मोह छोड़ो, ये तो डालियां हो गई, ये तो डालियां हम पत्तों से शुरू करते हैं। अब लोभ को था तो वो सार्वभौमिक और हमने उसको पैसे से जोड़ दिया, काम था तो सार्वभौमिक हमने उसको स्त्री से जोड़ दिया, एक चीज को पकड़ लिया, बस इसको छोड़ो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, समझना इस बात को, कि अगर कोई आदमी कहे कि बस पेड़ के इस पत्ते को तोड़ दो, पेड़ खत्म हो गया, समझ में आई बात? कोई अगर आपसे ये कहे कि भाई ये पेड़ गिराना है क्या करना है, बोले बस एक पत्ता ये वाला तोड़ दो, पेड़ खत्म, संभव है? सिर्फ एक पत्ता टूटा है और आप कहते हैं कि हमने पेड़ तोड़ दिया, पेड़ खत्म नहीं हुआ है। और एक पत्ता टूटा है, लाखों पत्ते पहले से हैं और ध्यान रखना जहां से टूटा है वहां से भी दूसरा पैदा होगा, सतत पैदा होगा, और वो पैदा होने की संभावना तब तक बनी रहेगी जब तक कि जड़ें मजबूत हैं। आप तोड़ते जाइए, आप डालियां काटते जाइए, कि आप बालों को काटते जाइए वो बढ़ते जाएंगे, आप नाखूनों को काटते जाइए, कि कितनी विचित्र बात है ना, नाखून बढ़ जाते हैं आप काटते हैं, है ना, फिर बढ़ जाते हैं फिर काटते हैं, फिर बढ़ जाते हैं फिर काटते हैं, ये हमारे विकारों की तरह है, आप जितना काटोगे वो बढ़ते ही जाएंगे, वो खत्म नहीं होने वाले, नहीं खत्म होने वाले। इसलिए क्या करते हो, हर 7 दिन में हर 3 दिन में आप देखते हो बढ़ते हो, नहीं बड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा नेल कटर रखिए, और आप काटते भी हैं फिर चिकना भी करते हैं कि लोगों को पता नहीं चले, सुंदर भी बनाते हैं। सावधानी तो हर जगह जरूरत है, ये विकारों के प्रतीक है, ये कि नाखून की बाल, कितनी विचित्र बात है, आपका सौंदर्य है लेकिन आपको कुरूप करने पर लगे हुए, संसार का काम, संसार का क्रोध, संसार का लोभ भी आपको सुंदर बना सकता है इन नाखूनों की तरह, अगर आपको काटना आ जाए, अगर आपको सुंदर बनाना आ जाए, तरीका आ जाए। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करना, अगर इन नाखूनों को निकाल दें तो कोई आदमी सुंदर रह सकता है, और बालों को तो निकालने की संभावना ही नहीं है, या पूरा भी निकाल दोगे तो भी आएंगे। और मैं मानता हूं कि ये विकार आते रहेंगे, लेकिन इनको सुंदर बनाने का तरीका है, एक ही तरीका है कि उसको मोड़ दीजिए, एक दिशा दीजिए, कि काम बुरा है कब तक, जब तक कि वो संसार का चिंतन करता है, लेकिन वही काम श्रेष्ठ हो गया गोपियों के साथ में, गोपियों के पास में। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं कि गोपियों ने भगवान के द्वारा बजाई हुई बांसुरी को सुना, तो सुनकर के गोपियों की मन का काम बढ़ गया। साफ शब्द है, हां, अनंग वर्धनम, अनंग कौन है, काम, काम बढ़ गया। तो शास्त्रकारों में बड़ी बहस हुई है इस बात को लेके कि भगवान की बांसुरी को सुनकर के काम बढ़ गया, ये तो गलत है। तो शास्त्रकारों ने समझाने का प्रयास किया कि है तो वो काम ही है, लेकिन वो काम नहीं है जो काम हम समझ रहे हैं, वो काम कामना है परमात्मा को प्राप्त करने की भावना, जिसे हम भक्ति कहते हैं, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जिसे हम अनुराग कहते हैं, वो अनुराग परमात्मा के साथ जुड़ने से अच्छा हो गया, सुंदर बन गया, बढ़िया हो गया, कि जैसे चाकू अगर डाकू के हाथ में हो तो वो हानि पहुंचाने वाला है, और वही चाकू अगर डॉक्टर के हाथ में हो तो वो आपको जीवन देने वाला है। चाकू एक ही है, लेकिन सही हाथ में पड़ने से उसका वो सदुपयोग होने लगा, कि आपके हाथ में पड़ जाए तो आप उसका रसोई में बढ़िया सदुपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। काम एक ही है, सबने अपनी अपनी तरह से उसका उपयोग किया, सबने अपनी अपनी तरह से उसको उपयोग में लाया। मैं ये चाहता हूं कि अपने मन की वृत्ति जो परमात्मा ने दी है, उन सारी वृत्तियों का उपयोग सकारात्मक दृष्टि से हो। आप सोचो, देखो हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान कर लो, क्यों कर लो, बोले ताकि हमारे मन की सारी कामनाएं नष्ट हो जाए, करके देख लो, हो जाए तो मिलना हमसे, कामनाएं नष्ट हो जाए, संभव है? ये ऐसा ही संभव नहीं जैसे कि आपके बाल नष्ट हो जाएं, होते ही रहेंगे, पैदा ही होता रहेंगे, आप काटते जाइए वो, और पैदा होने में टाइम नहीं लेते हैं, आपने इधर खत्म किया और 2 घंटे के बाद में हाथ घुमाना, आपको महसूस होगा कि कुछ है, पता चलेगा, मालूम पड़ेगा। ऐसे ही काम इधर आप ध्यान करके आए और आपने सोचा कि सारी कामनाएं खत्म हो गई, लेकिन जरा उनको छू के देखना, अभी भी भरी पड़ी है। रोज का झंझट है, नित्य प्रतिदिन नहीं नहीं हर क्षण। और ध्यान देना कि जब आप ये सोचते हो कि अभी मेरे मन में कोई कामना नहीं है, तब वो कामना ही तो पैदा हो रही है। आप कहते हो कि मुझे कोई चिंतन नहीं करना है, लेकिन ये भी तो चिंतन ही है कि अगर किसी ने दीवार पर लिखा कि यहां पर कोई भी एडवर्टाइजिंग करना मना है, ये भी तो एडवर्टाइजिंग है, ये भी तो लिख रखा है। आपने कहा कि यहां पोस्टर चिपकाना मना है, ये भी तो चिपका हुआ है। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि लिखने की ये लिखने की जगह कि यहां पोस्टर चिपकाना मना है, उस दीवार को ऐसा बना दो कि कोई चिपका ही न सके, कि कोई लिख ही न सके। हम अपने मन को ऐसा बना लें कि कोई कामना चिपक ही न सके, कामना तो आएगी। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं कि कामना प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार स्वभाव बनता है, ये तो आपको पता ही है। हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार स्वभाव का निर्माण होता है। प्रारब्ध का अर्थ भी आप जानते हो, पिछले जन्म के कर्म। और आप ये भी जानते हो कि जो बाण छूट गया वो वापस नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि जो प्रारब्ध आपका बन चुका है वैसा स्वभाव आपका बन के रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? बनेगा ही बनेगा। कि अगर प्रारब्ध क्रोध का है तो क्रोध आएगा ही आएगा, प्रारब्ध काम का है तो काम रहेगा ही रहेगा, प्रारब्ध लोभ का है तो लोभ बनेगा ही बनेगा। इसे आप, हम या कोई दूसरा नहीं बदल सकता। दुर्वासा जैसा ऋषि भी क्रोध के प्रारब्ध को भोगता है, विश्वामित्र जैसा ऋषि भी काम के प्रारब्ध को भोगता है। ये शास्त्रों के उदाहरण साबित करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि प्रारब्ध जनित स्वभाव मिट नहीं सकता। लेकिन मुझे बताइए जरा कि क्या क्रोध के कारण दुर्वासा का महत्व कम हुआ, काम के कारण विश्वामित्र का महत्व कम हुआ? नहीं। क्यों क्यों कम नहीं हुआ पूछो? इसलिए क्योंकि काम तो आया लेकिन चिपका नहीं, क्रोध तो आया लेकिन चिपका नहीं। हमारे साथ मुश्किल यह होती है कि क्रोध आता है और चिपक जाता है तो वो गांठ बन जाती है। हम इससे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये हमारा दुश्मन है, ये क्रोध को हमने चिपका लिया। मैं कहता हूं कि किसी ने, सामने वाले ने गलत काम किया, आपको क्रोध आ गया, आपने बोल दिया और खत्म हो गया, चिपके नहीं आप, और फिर आप उससे प्रेम से बात कर रहे हैं।